Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aap sabka abhinandan. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ एसपी शर्मा. डॉ शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत अभिनंदन.
जी, थैंक यू प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
The benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds 50 points. Nifty settles above 23,400. Cabinet approves scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. And gold and silver prices jump around 6% after government hikes import duty.
घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त. सेंसेक्स 50 अंक बढ़ा. निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है. और सरकार द्वारा आयात शुल्क को दोगुने से अधिक बढ़ाने के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में लगभग 6% का उछाल आया.
Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए अब जानें शेयर बाजार का हाल. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में चार दिन से लगातार जारी गिरावट के बाद आज मामूली तेजी दर्ज की गई. सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ. व्यापक शेयर बाजार के सूचकांकों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. मिड कैप 100 में लगभग 0.8% का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई.
The benchmark domestic equity indices rose marginally today after a volatile trading session snapping a four-day losing streak. The Sensex advanced 50 points to close at 74,609, while the Nifty added 33 points to settle at 23,413. The broader market on the National Stock Exchange ended higher than frontline indices. The mid-cap 100 jumped nearly 0.8%, while the small-cap 100 gained 0.3%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 2.1%, पावरग्रिड और इन्फोसिस के शेयर 1.5% से अधिक, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के शेयर में 1.2% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स 4.5%, टाटा स्टील के शेयर 3.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.9% बढ़े.
एंड इन द सेक्टोरल इंडिसेस एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एज्ड अपवर्ड. इन द टॉप गेनर्स मेटल रोज 3.3%, टेलीकम्युनिकेशन क्लाइम 2.8% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एडेड 2.4%. Among the top losers, IT shed 1.1%, focused IT lost 1%, and auto dropped 0.9%. Overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. Shares of 2,406 companies declined, 1,794 advanced, and 169 remained unchanged.
और अब बात रुपए की. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.47 पर कारोबार कर रहा था. डॉक्टर शर्मा, हमने देखा आज की लगातार चार दिन से बाजार में मंदी हमें देखने को मिल रही थी, मगर आज एक तनिक तनिक सी हरियाली हमें नजर आई, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए प्राची, जो हमें मंदी दिख रही थी उसके पीछे बहुत बड़े कारण थे. जो कुछ भी समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है यूएस के और ईरान के बीच में, बल्कि ये बढ़ती जा रही है जो टसल है. भले ही हम उसको सीजफायर कहें, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और गहरा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज किसी एक मुद्दे को लेके उसके ऊपर कुछ बातचीत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं. तो उसकी वजह से वापस जो एक नेगेटिविटी का माहौल बना ग्लोबल लेवल पे, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में डिसेलरेशन हुई, तो स्वाभाविक है कि सभी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट है. इंडिया भी उसमें कोई ऐसे इंसुलेटेड नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होगा. तो एक, लेकिन आज एक जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, शॉर्ट कवरिंग कहूंगा मैं, क्योंकि अभी हम वॉलेटिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते. ये एक जो डेसिलरेशन थी उसमें थोड़ा सा विराम आया है, लेकिन अभी जब तक कुछ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके फैसला नहीं हो जाता, जब तक यूएस और ईरान में कोई संधि नहीं हो जाती, तब तक हम मार्केट्स में स्ट्रांग रिबाउंड नहीं मान सकते. तो उसी के मद्देनजर जो आज हमने थोड़ी एक रिकवरी देखी, पहले वो रिकवरी काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में वो सबसाइड हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई
जी.
क्योंकि एक अनसर्टेनिटी अभी भी है ग्लोबल लेवल पे, जो दिन प्रतिदिन गहरा रही है. जो अभी देखो कि दो महीने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, उसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा किस कंट्री के ऊपर, अभी वो सीधे तौर पे विजिबल होना भी बाकी है, जो आने वाले टाइम में पता चलेगा. अभी तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, हम खाली एक पॉइंट देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं, जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं, जो इकोनॉमी इसके ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो वो अभी किसी को भी सही रूप से अभी उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है.
डॉक्टर शर्मा, आपने मुनाफा वसूली की बात की जो आज हमने बाजार में देखी, मेटल के जो शेयर्स हैं उसमें काफी खरीदारी हुई है.
जी बिल्कुल, उसकी वजह तो जो भी कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, प्लेटिनम के ऊपर, तो उसी की वजह से एक जब कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं. अब जो लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उनको उतना जो और ज्यादा जो कस्टम ड्यूटी है देना पड़ेगा. तो मान लीजिए पहले वो 1,00,000 रुपए के ऊपर 106 देते थे, तो अभी उनको 115 देना पड़ेगा, तो जिससे कि उतना ही प्राइसेस में एक अपसाइड आना स्वाभाविक है कि अब वो जो प्राइसेस है वो मार्केट में, रिटेल मार्केट में उतने दाम पे बिकेंगे.
राइट डॉक्टर,
तो इससे कुछ शायद जिनके पास स्टॉक्स हैं, जो ऐसे ज्वेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक्स होंगे, उनको भरपूर मुनाफा भी हुआ होगा, क्योंकि उनके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए,
एकदम से बढ़ गए.
क्योंकि आज जो कल जो गोल्ड बिकेगा उनका जो भी, तो उस प्राइस पे ऊपर ही वो बिकेगा.
Absolutely, Dr. Sharma, we are given to understand, as you also mentioned, about the Strait of Hormuz being closed for the past 2 months now, and the global uncertainties, of course, you know, later on in the program, we'll also discuss about the U.S. President's visit to China, something it's kind of keeping our fingers crossed as to something, might something, you know, come out of it, eke out of it, and of course, you know, it goes without saying that we'll be discussing the Iran issue. There and of course the Cold War between the two major economies of the world. Now, besides the point, you know, for the benefit of our listeners, what particular, if you may say, broadly speaking, the sectors would you recommend for them to invest at the moment when the horizon seems to be that much more uncertain in the coming times?
Firstly, I would say time is not that much opportune to invest in the market this time, because if you are investing for the long term, that is okay. But if you are investing for the shorter period or you want to make profits immediately, then there is no recommendation from my side that you should enter in the market. For the long term, there are benefits, because India is a long-term growth story. Mm-hmm. We have many promising sectors. Mm-hmm. As I say always, that every sector of the economy is promising, starting from infrastructure to information technology. Mm-hmm. So, like energy sector, telecom, power, your textiles, your pharmaceuticals, your engineering goods, gems and jewelry, all sectors are promising sectors. But the time of investment for the shorter period is not recommended. Investment should be for the longer period of time, because markets may remain volatile for more time. Because nothing is settled at the global level between Iran and US. So let the thing settle. Then long-term investors can invest. The market will provide the opportunity. Markets are always dynamic. They provide the opportunity to invest and opportunity to book profits. Like today, people book their profits at the higher level. Now, they will again enter at the lower level. So I would say that time is very crucial, very sensitive time considering the global developments. So one should not enter in the market to make the short-term profits. If you are investing for the 1 year or 2 year or 3 year, then that is recommended. But if you are taking a scenario of 3 months or 6 months, then I will not recommend any investment right now.
All right.
जी आगे बढ़ते हैं श्रोताओं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज प्रमुख एशियाई शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.5% से अधिक, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक, जापान का निकेई लगभग 1%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.7% और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.1% से अधिक बढ़ा. वही बात यूरोपीय सूचकांकों की करें तो यहां प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. जर्मनी का डैक्स 0.5% से अधिक और लंदन के फुटसी में मामूली बढ़त नजर आई. वहीं फ्रांस के कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% गिरकर कारोबार करता नजर आया.
एंड मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द बेंचमार्क S&P 500 एंड द टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट क्लोज्ड lower yesterday, weighed down by losses in technology stocks. Investors also reacted to elevated oil prices and a hotter than expected inflation reading for April. The Nasdaq Composite Index slumped 0.7% and the S&P 500 lost 0.2%. However, the Dow Jones Industrial Average eked out a gain of 0.1%. On the economic front, the Consumer Price Index rose by 0.6% in April, pushing the annual inflation rate to 3.8% according to the Bureau of Labor Statistics. Dr. Sharma, when we look at the Asian markets, all of them, be it the Korean market, the Japanese market, the China Shanghai Composite, Hong Kong Hang Seng, and also the European markets, they kind of, there was an uptick today. But when you look at the US markets, yesterday's data, of course, and especially when we look at the technology stocks, we have been hearing a lot about the AI bubble forming, and nobody's pretty sure about how is it going to pan out in the coming days. And of course, the data when it comes to the consumer price index and all, inflation as well, not very encouraging actually coming. And inflation, of course, is, as the story reads, hotter than expected inflations.
Right.
How is it going to pan out in the coming days?
Actually, US is now in a quagmire of imbalances in the macroeconomic environment because their growth is decelerating. Their growth decelerates from more than 3% to 2.1% for the current year. Earlier, it was anticipated at 2.3%, but now, the according to the recent numbers by IMF, the growth will be at around 2.1%. So that is the number of April, actually. Now, if a number comes again, then I believe the growth will again decelerate to less than 2%. And the inflation is rising. Their inflation is, earlier inflation was sticky at around 2.7, 2.8, 2.9. Now the inflation is strongly elevated to the level of 3.8%. So inflation is higher than the growth. You are growing at 2.1%, but your inflation number is 3.8%.
Yes.
That is creating a great macroeconomic balance that is not benefit for the benefit of the economy or the people or the investors. So I think economy is going to face a severe challenge in the coming times. And again, they are in a severe war with Iran. That expenditure is not factored in till now. So going forward, I believe they have to take major measures, economic reforms for their economy to move forward and to contain inflation and to strengthen their growth trajectory. Because this juncture is not favorable. Their inflation is high. They will not be able to reduce the their interest rates. Fed will be very, very, I believe, hard in taking decisions for the easing of the money. And they need money. They need liquidity to support the growth. So I believe they are caught in a difficult situation, and growth is expected to decelerate further, and inflation will remain elevated because they have earlier they had imposed high tariffs. So now this is the lagged effect of those higher tariffs also. Their impact on the consumer goods. They paid for the purchase at the higher duties. So now situation is very, I believe, crucial for them to सेटल दिस होल सिनेरियो.
डॉक्टर शर्मा, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, बिंदुओं को आपने रेखांकित किया, तो इन सभी ये जितनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमारे जो भारतीय निवेशक है जो हमारे बाजार में निवेश करते हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबल मार्केट से भी, उनके मनोविज्ञान पर कैसा असर पड़ रहा है, आप कैसा असर पड़ता हुआ देख पा रहे हैं, जिसका आपको प्रतिफल नजर आ रहा है बाजार के उतार चढ़ाव में?
देखिए, उनका उनका मनोविज्ञान बहुत क्लियर है. दे आर वेरी वाइज एंड दे टुक देयर प्लॉजिबल डिसीजंस. हमें एक हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है इस टाइम पे, ये जो ग्लोबल हेडविंड्स है, ये जो यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपने देखा होगा जब जब कुछ ऐसी बात चली पीस की, थोड़ा सा भी पीस की बात चली, तो हमारी मार्केट्स ने स्ट्रांगली रिबाउंड किया. तो चैलेंज वही है. वो एक थ्रेट है हमारे लिए जो जो हमारी मार्केट को बार बार, मैं उसको कहूंगा कि इम्पैक्ट करता है, या फिर हम कहें धराशाही करता है, कि जिसको जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को नेगेटिव उसमें कन्वर्ट करता है. तो अदरवाइज हमारा हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज. आवर इन्फ्लेशन नंबर्स आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल. आरबीआई के बैंड में है, 2-6% के बीच में जो है, अभी 3.5% के आसपास का रीडिंग है. सो दैट इज इन बेनाइन कंडीशंस.
ये एक फेज है.
और इसके अलावा जो हमारे दूसरे फंडामेंटल्स हैं, आईआईपी नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट्स में हमने कितनी महारियत हासिल की है, हमने लास्ट ईयर अच्छा ग्रोथ किया है, $863 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, और इस साल का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है. अभी हम हमारे माननीय जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 1 ट्रिलियन का हम टारगेट लेके चल सकते हैं. और आगे आने वाले टाइम में जो हमारी ट्रैजेक्टरी है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी. हर रोज रिफॉर्म्स हो रही है. आज भी कोई नई रिफॉर्म हुई है, कल भी हुई थी और कल भी होगी. लेकिन अभी चैलेंज क्या आता है कि जो नए स्टेटमेंट आते हैं, अभी आप देखिए कि 2 महीने से हुआ कुछ नहीं है. स्टेटमेंट्स ने ऐसा एक बबाल मचाया है जो हर रोज कभी ट्रंप साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो एक पैनिक क्रिएट होता है. उससे उससे क्या है कि मार्केट्स बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके ऊपर एकदम से इम्पैक्ट आता है. दूसरे बिजनेस जो जो मैन्युफैक्चरिंग में है या बिजनेस, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना मार्केट उसको इमीडिएट फैक्टर इन करती है. जैसे अनाउंसमेंट हुआ, जैसे आपने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे उतराव चढ़ाव देखे
जी.
तो अगर ये पीस टॉक्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिस दिन कभी ना कभी तो ये सेटल होगा मामला, ऐसा लंबा तो नहीं चलेगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करेंगे. ये मेरा मानना है. मार्केट्स इससे उच्चतम स्तर भी बना सकती है, क्योंकि हमारा हरेक एक एक फंडामेंटल स्ट्रांग है. हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो ओरिजिनली एस्टिमेट किया गया, दैट इज मोर देन 7%. भले ही अभी कुछ रेटिंग एजेंसी उसको अंडरमाइन कर रहे हो कि जी इंडिया 6.5 पे ग्रो करेगा या 6 पे करेगा, बट आई स्टिल बिलीव दैट वी विल ग्रो मोर देन 7% इफ दिस टसल सेटल्स बिटवीन यूएसए एंड ईरान.
Even as you mentioned that, Dr. Sharma, the tussle between the US and Iran, the US President Donald Trump has arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. And during their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues including war involving Iran, US arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The meeting will mark Trump's 7th face-to-face interaction with Xi and the first visit by a U.S. president to China since 2017. Dr. Sharma, the first visit by a U.S. president in almost 10 years now. This is so significant. And also, you know, given the backdrop of the U.S.-Iran tussle happening, as you mentioned earlier, and also, of course, we know the Cold War, you know, the economic Cold War between the US and China. Now, what can we really expect of this meeting, you know, because this appears to be a very ambitious meeting which is going to take place, you know, it's a summit meeting with Chinese counterpart.
See, both are significant economies. One is the largest economy and second is the second largest economy.
Right.
And because they are their talks and their bilateral relations are very important for the global economy. And not only for the global economy, but for them also. China is important for US. for the trade scenario, and US is also important for China for the trade trajectory. So I believe this will be a positive talk, and they will come out with some good announcement after this talk, and that will be beneficial for the not only for this region but for the world economy also. This is the expectation that both the economies are responsible economies, and they represent a significant chunk of the global GDP. One is a $30 trillion economy, and second is the $19 trillion economy. The total becomes at around 40 trillion, which is a significant amount at around 30 to 35% of the global GDP.
Right.
So I believe there must be some plausible announcement for the peace process between the USA and
So
Iran.
besides the economy you're talking about between the US, the two biggest economies of the world, number one, number two, China has been predominantly, if you look at the West Asian tussle as of now, China has been predominantly playing a very neutral role, standing on the sidelines. Do we expect something coming out of China, kind of maybe not jumping in, but probably, kind of playing a more proactive role in de-escalating the situation over there?
Yes, I think so. That China is very important or significant country for the this peace process, and China holds a great weight in the global economy and such kind of talks. And we can expect something positive for the this important talk.
Right, moving on. The cabinet today approved a scheme for the promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for the production of syngas and its downstream products, targeting the gasification of approximately 75 million tons of coal and lignite. Mr. Vaishnaw said that the scheme is expected to generate annual revenue of 6,300 crore rupees.
पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
And the Union Cabinet has also approved an increase in the minimum support price MSP for 14 Kharif crops for the marketing season 2026-27. Addressing the media, Minister Ashwini Vaishnaw said that the government has ensured remunerative price for farmers' produce, with the estimated payout to farmers expected to reach 2,60,000 crore rupees.
खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
And in addition, the cabinet approved the upgradation and modernization of Nagpur International Airport through a long-term license involving a private partner under the PPP, that is public-private partnership model.
डॉक्टर शर्मा, 14 प्रकार की खरीफ की फसलों पर उनका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसमें उसको वृद्धि देना, उसको सुदृढ़ करना, ये किस तरीके से सीधा असर, सीधा प्रभाव डालेगा जो हमारे देश के किसान हैं उनकी उनकी उन पर?
देखिए, सरकार का जो लक्ष्य रहा है वो हमेशा किसानों की आमदन को बढ़ाना रहा है.
जी.
सरकार ने अभी तक कितनी स्कीम्स अनाउंस की हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिनको किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो. तो उसी संदर्भ में एक कदम है कि जो MSP है वो हर एक साल रिवाइज होता है और हर एक साल बढ़ के आता है. और दूसरा, जो प्रोडक्शन है, जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो हर एक साल नए कीर्तिमान भी स्थापित करता है. ये उसी संदर्भ में एक गवर्नमेंट का सपोर्ट और हमारे किसानों की मेहनत, दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसको आगे लेके जा रहा है. और अगर हम पिछले 10 वर्ष में देखें
जी,
और पहले 10-10 वर्ष की तुलना में अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें, तो इस पिछले 10 वर्ष का जो एवरेज ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, वो सबसे ज्यादा है. तो उसी संदर्भ में जो हमारा एक्सपोर्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम $1 trillion तक अपना एक्सपोर्ट लेके जाए इस वर्ष में, तो उसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग कोई $50-60 billion का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होता है
जी।
तो इसी के मद्देनजर सरकार हमेशा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी सपोर्ट में हमेशा तत्पर रहती है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है पिछले काफी वर्षों में
जी।
या डॉक्टर शर्मा, टॉकिंग ऑफ द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सर्फेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टुडे विद द आउटले ऑफ 37,500 crore, नाउ वी डू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस, बट व्हाट वी ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड इज दैट हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी for the country,
right.
Given the situation. Again, the backdrop would be the same, the West Asian crisis happening at the moment.
Yes. This is I think, a great step towards clean energy. And second, for our self-reliance.
Hmm.
Because now we are facing significant troubles at the global level in terms of energy.
Gee.
So with this gasification, like converting coal in gas, is a great step. Because this is the clean energy and government is providing a great incentive, 37,500 crores, and that will be 20% of the total project cost, but not higher than 5,000 crore rupees. And if the if and product wise 7,000 crore. And for a total entity, 12,000 crore. So I think this is a great incentive for the gasification field.
Yeah, and moving on to the bullion market, gold and silver prices today witnessed a sharp surge of around 6% after the government more than double the import duty. In the spot market, 24-carat gold was trading 5.9% higher at 1,63,220 rupees per 10 grams, while silver was trading 6.7% higher at 2,98,370 rupees per kilogram.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध वाला सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,573 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 6.7% बढ़कर 2,97,908 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। हालांकि दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि देखी गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क उपकर सहित 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया है। इस कदम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य चालू खाता घाटे को कम करना और मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना है।
वेरी क्विक कमेंट्स ऑन द सर्च।
यस, प्राची ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट दिस इज टू स्टॉप द unnecessarily import of the gold to save the forex, but the prices has gone up significantly with this custom duty. So I believe if there is a correction in the international market in the gold prices, then that will compensate the this price rise.
जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत छोटा सा,
देखिए अभी मैं इस जंक्चर पे तो नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाई पे हैं, बहुत वॉलिटिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो कोई भी कुछ भी लॉस हो सकता है इनकेस कोई इस हायर प्राइस पे एंटर करेगा।
यस, एंड मूविंग ऑन टू क्रूड, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल मॉडरेटली टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.3% डाउन एट $107.40 पर बैरल, while the West Texas Intermediate crude was trading 0.4% down at $101.79 per barrel when reports last came in.
Dr. Sharma, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जी। शुक्रिया, thank you
Dr. Sharma. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices rise marginally, Sensex adds 50 points, Nifty settles above 23,400. Cabinet approves scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. And gold and silver prices jump around 6% after government hikes the import duty. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।